फिलहाल नानी माँ की बात सुनकर अरमान ने तिरछी नज़रों से उन लोगों की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, आखिरकार मैंने इन लोगों को इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे दे दी कि वे अरमान सिंघानिया के साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं। वो अभी अपनी उधेड़बुन में ही था कि तभी अभिमान जी वहां आए और अचानक अरमान के सामने आकर खड़े हो गए। उसे देखते हुए बोले, अब मैं जानता हूं बेका, तूने मेरी वजह से वसुंधरा और वीर को इस घर में नौकर बनाकर रखा हुआ है, ताकि जिस तरह से इन्होंने बचपन में, जब तू बच्चा था, तब मेरे साथ नौकरी से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया था और वसुंधरा ने सारी हदें पार की थीं। इतना ही नहीं, मुझ पर और तुझ पर भी हाथ उठाया था, तो तू उसका हिसाब बराबर कर सके। जैसे ही अभिमान जी ने वहां ये बात बोली, अरमान अचानक अपनी गर्दन तिरछी कर ली, क्योंकि इस तरह से अपने बचपन की बात वो सबके सामने कैसे आने दे सकता था। वो लाल आंखों से अभिमान जी को घूरते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया की किसी कमजोरी के बारे में बात करने की? और अगर अरमान सिंघानिया को बचपन में किसी ने परेशान किया था, तो अरमान सिंघानिया उसे उसकी सजा दे चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और किसी के सामने बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर अरमान ने जहरीली निगाहों से लड़कियों और नानी माँ पर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा, अब सभी लड़कियां समझ चुकी थीं कि अरमान इस तरह से अपने बचपन की बातें सबके सामने होते देखकर काफी असहज हो रहा है, तो सभी लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखते हुए सीधा नानी माँ को लेकर डाइनिंग टेबल पर चली गईं। सभी लड़कियों के जाते ही अब लड़के भी फटाफट से उठ खड़े हुए और जाकर अपनी अपनी पार्टनर के साथ बैठ गए। आकाश रश्मि के साथ, ध्रुव आहान, वंशिका रौनक के साथ, सुमित अपनी बीवी के साथ बैठ गया और अरमान सीधा जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। अब ये देखकर अरमान को काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि आकाश रश्मि के सामने सर्व कर रहा था और आहान रौनक के साथ, ध्रुव और सुमित भी राधिका वंशिका को खाना सर्व कर रहे थे। वहीं नानी माँ ने तिरछी नजरों से संदेश देते हुए एक बार वसुंधरा की ओर देखा। वसुंधरा हाथ बांधकर एक नौकरानी की तरह वहां खड़ी हुई थी। उसने सबकी पसंद से वहां पर कुछ डिशेज भी बना दी थी, लेकिन नानी माँ भला इस तरह से कैसे रौनक या रश्मि को उसकी बनाई हुई डिश खाने दे सकती थी, इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत सबको रोकते हुए बोली, अभी रुक जाइए, अभी कोई खाना नहीं खाएगा। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान जो अपने लिए कुछ सलाद वगैरह ले रहा था, उसके हाथ तुरंत रुक गए। उसने तिरछी नजरों से नानी माँ को घूर कर देखा और मन ही मन सोचने लगा, इस औरत की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से अरमान सिंघानिया के घर में किसी को खाना खाने से रोके और ऑर्डर दे। भले ही अरमान ने उन सब लड़कियों को आकाश, सुमित, ध्रुव के साथ बैठने के बाद इग्नोर कर दिया था, लेकिन नानी माँ की ये बात वो इग्नोर में ही कर पाया। वो भी कुछ कहने ही वाला था कि तभी नानी माँ बोल पड़ी, रौनक, रश्मि और मारिया बेटा, आप लोग अभी ये खाना नहीं खा सकते। सबसे पहले हमें ये खाना चेक करवाना होगा कि ये आप लोगों के लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये खाना वसुंधरा जी ने बनाया है। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान एक पल के लिए सन रह गया और साथ ही वसुंधरा को गहरी नजरों से देखने लगा। कहीं ना कहीं उसे नानी माँ की बात सही लगी, क्योंकि वसुंधरा कितनी ज्यादा चालबाज थी ये बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल वहीं अभिमान जी तुरंत उठ खड़े हुए और बोले थे, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जैसे ही अभिमान जी ने सबके सामने नानी माँ को माँ कहा, अरमान के माथे पर सोच की लकीरें उभर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिरकार ये लेडीज है कौन और ये इतनी ज्यादा निडर होकर क्यों बैठी हुई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरे घर में इन्हीं की चलती है? और ये मिस्टर सिंघानिया को क्या हो गया है कि इस ओल्ड लेडी को माँ कह रहे हैं? अब कहीं ना कहीं सबके दिल और दिमाग में भी कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। फिलहाल आकाश तुरंत खड़ा हुआ और नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पूरा खाना टेस्ट करवा लेता हूँ। ये कहकर आकाश ने जल्दी ही कुछ नौकरों को बुलाया और फटाफट से सभी खाना उन्हें टेस्ट करने के लिए दिया। उनके टेस्ट करने के बाद जब नौकरों को कुछ नहीं हुआ, तब भी आकाश ने संतुष्ट होकर मिनी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी खाना टेस्ट करवाया, लेकिन सब कुछ सामान्य और नॉर्मल निकला। तब जाकर नानी माँ ने सबको खाना खाने की इजाजत दी थी। वहीं अरमान अब बिल्कुल खामोश था, लेकिन साथ ही साथ वो लगातार ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। उधर जब पनीर की डिश आई तो रौनक के मुंह और होठों पर बार बार जीभ फिरने लगी। ये देखकर आहान ने तुरंत उसे कोहनी मारी और धीरे से बोला, क्या कर रही हो हवा हवाई, इस तरह से सबके सामने खाने को देखकर इतना बुरा रिएक्ट कैसे कर सकती हो? आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले मुश्किल से पूरे दिन में एक सैंडविच खाती थी, उसके बाद भी मैं तुम्हारे आगे पीछे खाना लेकर घूमता रहता था, लेकिन तुम कुछ नहीं खाती थी और अब अचानक तुम्हें हो क्या गया है? इतना सारा खाना तुम छोटे से पेट में कैसे समेट पाओगी? तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? अब जैसे ही आहान ने रौनक से ये कहा और इस तरह की बात बोली, तभी अरमान की आंखें सख्त हो गईं। ऐसा लगा मानो अब उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। उसने तुरंत जोरदार मुक्का खाने की टेबल पर मारा और खड़ा होकर उधर इशारा करते हुए बोला, आहान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से इस तरह बात करने की? ये कब क्या खाती है क्या नहीं खाती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सच सच बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? और ये ओल्ड लेडी? अरमान जानबूझकर नानी माँ को नानी माँ कहने से बच रहा था, इसलिए उसने उन्हें ओल्ड लेडी कह दिया। अब जैसे ही नानी माँ ने अरमान के मुंह से अपने लिए ओल्ड लेडी सुना तो उनकी भौहें तन गईं। मन ही मन वो सोचने लगी, अभी तो हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि दामाद जी हमारे मुंह पर हमें बूढ़ा कह रहे हों। भले ही वो अंग्रेजी में कह रहे हों, लेकिन अंग्रेजी में बूढ़ा हो या हिंदी में, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है ना। नानी माँ अपनी भौहें उठाकर अरमान को देखने लगी, लेकिन तभी दादाजी तुरंत उठ खड़े हुए और अरमान का हाथ पकड़कर बोले, शांत हो जा अरमान, ये क्या कर रहा है और ये क्या तरीका हुआ बड़ों से इस तरह बात करने का? क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? हाँ, तुम ऐसे कैसे उन्हें ओल्ड लेडी बोल सकते हो? तो तुम उन्हें आंटी जी या कुछ और भी तो बुला सकते हो, इस तरह से तुम्हें उन्हें ओल्ड लेडी कहने का क्या मतलब है? अब दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अचानक अपनी गर्दन तिरछी कर ली और दादाजी को देख कर बोला था, क्या बात है दादाजी, मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से ये ओल्ड लेडी और उनकी बेटियाँ इस घर में आई हैं, सभी लोग काफी ज्यादा बदले बदले से लग रहे हैं। और ये आहान को क्या हुआ है? ये सिर्फ इस लड़की के आगे पीछे क्यों घूम रहा है? क्योंकि किस वक्त आज सुबह रौनक पार्क में जाकर बैठ गई थी, आहान उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए गया था। ठीक उसी वक्त अरमान ऑफिस के लिए निकला था और उसने पार्क में रौनक और आहान को बैठे हुए देख लिया था, तो ये बात उसकी आंखों में चुभ गई थी। लेकिन फिलहाल उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी तो वो इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस तरह से रौनक के साथ आहान बिहेव कर रहा था और उसे खाने को लेकर टोक रहा था, तो ये बात अब अरमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था और उसने तुरंत इस बात पर एक्शन ले लिया था।
अब तो अरमान की बात सुनकर वहाँ खामोशी पसर गई थी। वहीं कहीं ना कहीं आहान सोचने लगा, ये क्या कर डाला मैंने, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? अगर अरमान भाई को पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो वो तो आज ही मुझे उससे अलग करवा देंगे। उन्होंने तो टाइगर भैया और मारिया दीदी को भी तलाक के लिए बोल दिया है। देखो बेचारे दोनों का चेहरा किस तरह लटका हुआ है। क्योंकि टाइगर और मारिया जो खाने की टेबल पर मौजूद थे, आज कुछ अजनबी से लग लगे थे। वे एक दूसरे की ओर देखने से भी कतरा रहे थे। दोनों ने ही तलाक के बारे में अभी तक आपस में कोई बातें नहीं की थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का दर्द सभी कपल्स अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। और ये सब चीज़ आहान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने तुरंत ध्रुव को कोहनी मारी और बोला, भाई कुछ करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है देखा तूने? अरमान भाई हर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था बस, रौनक को खाने को लेकर। मुझे क्या पता था कि अरमान भाई सुन लेंगे? और अरमान भाई ऐसे कैसे कपल्स की बातें भी सुन सकते हैं, ये तो बुरी बात है ना। जैसे ही आहान ने रोनी शक्ल बनाते हुए ये कहा, ध्रुव तुरंत उसे डांटते हुए बोला, तुझे तो बहुत शौक है ना अपनी जबान चलाने का, तुझे क्या ज़रूरत थी इस तरह ज़्यादा बोलने की, वो भी अरमान भाई के सामने। कितनी बार कहा है थोड़ी सी एक्टिंग कर लिया कर, अभी देख मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन देख मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ। तूने देखा ना, मैंने वंशिका के सामने सिर्फ डिसीजन रख दिया, लेकिन उसके प्लेट में कुछ भी सर्व नहीं किया, क्योंकि अरमान भाई सभी को गौर से देख रहे थे। आकाश भाई और सुमित भाई ने भी केवल डिशेज आगे कर दी, लेकिन किसी के प्लेट में खुद से सर्व नहीं किया, क्योंकि अरमान भाई की नज़र सबके ऊपर थी। लेकिन तू तो उठा उठाकर प्लेट में खुद अपने हाथों से रख रहा है, तो क्या अरमान भाई देखेंगे नहीं? वो अंधे थोड़ी ना है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये बोला, आहान ने अपना मुंह बना लिया और बोला, तो क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकता? दुश्मन है क्या तू मेरा? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ये कहकर वो अपने बालों को छूने लगा, लेकिन फिर खुद को शांत करके गहरी सांस ली और बोला, अरमान भाई आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़कियां हमारी मेहमान हैं और इनकी मेहमान नवाजी करना हमारा धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। आप नहीं जानते, मेहमान देवता के समान होते हैं और नारी नारी तो पूजा करने के लिए होती है। क्या आपने नहीं सुना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जैसे ही आहान ने शुद्ध हिंदी में इस तरह की बातें करना शुरू किया और मंत्र पढ़ा, ध्रुव की अचानक हंसी छूट गई, क्योंकि वो जानता था कि ये बातें आहान के मुंह से बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थीं। दरअसल ये सब बातें उसने आस्था के मुंह से सुनी थीं। नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और अब वो फटाफट से वही मंत्र और लाइनें अरमान के सामने बोलता जा रहा था। अरमान तो आंखें बड़ी करके देख रहा था, ये वही आहान है जिसे अगर कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो उसे जल्दी से एक लाइन भी याद नहीं होती थी, जिसके लिए कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ करता था और वो हमेशा पैसे देकर दूसरों से अपना काम करवाता था। लेकिन आज तो वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इतने बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहा था कि सभी हैरान थे। वहीं उसे देखकर रौनक को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं राधिका, वंशिका, रश्मि, साथ ही साथ आकाश और सुमित सभी जोर जोर से हंसना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त आहान ने जितने हो सकते थे उतने मंत्र अरमान के सामने सुनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें वो मेहमान नवाजी को लेकर सारी बातें डिस्कस कर रहा था। वहीं दादाजी भी तारीफ भरी नजरों से आहान को देखने लगे और फिर अरमान को कड़क अंदाज में देखकर बोले थे, देखा तूने, ये तेरा छोटा भाई है लेकिन देख कितना समझदार है, और तू है कि सबको शक भरी नजरों से देखता रहता है। तुझे आखिरकार अकल कब आएगी? अरे मैं तो कहता हूँ तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर तू शादी कर लेगा तो क्या पता तुझे भी सबके इमोशन समझ में आए। अब जैसे ही बातों बातों में दादाजी ने जानबूझकर अरमान के सामने शादी का जिक्र किया तो अरमान की आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थीं मानो अभी और इसी वक्त दादाजी को निकल लेगी। फिलहाल सब उन्हें देखने लगे थे, लेकिन अरमान ने केवल दादाजी को अपनी सीधी हाथ की उंगली दिखाकर एक ही बात बोली थी, नॉट अगेन दादाजी। ये कहकर अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं दादाजी अब अपना सिर पकड़कर बैठ गए और बाकी सबकी ओर देखकर बोले, देखा आप लोगों ने शादी के नाम पर ही उसकी हालत कैसी हो गई थी। इसका मतलब साफ है कि हम अरमान से किसी भी कीमत पर शादी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि अरमान सिंघानिया एक बार फिर डेविल किंग बन चुका है और शादी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब नामों से उसे कितनी ज्यादा चिढ़ है ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल नानी माँ ने दादाजी की ओर देखकर कहा था, भाई साहब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी गोरी है ना, और जब मेरी गोरी ने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं तो वो इस दुख को भी जरूर कबूल कर लेगी। मुझे अपनी गोरी पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ उसे दर्द तो जरूर पहुँचेगा, लेकिन वो अपने पति को जरूर एक बार फिर से अपना बना लेगी। दादी की और नानी माँ की बातों में आत्मविश्वास देखकर कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन सा था और कहीं ना कहीं बस वो सब लोग आस्था की बेसब्री से आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं आहान तो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से जाकर नानी माँ को गले से लगाकर बोला, नानी माँ अब तो सिर्फ यही लग रहा है कि आस्था भाभी ही हम सबका इकलौता सहारा है, क्योंकि अगर अरमान भाई को पता चल गया कि हम सबकी शादी हो रखी है तो वो तो हम सबको अलग कर देंगे, और आप तो जानती हैं मैं तो अपनी बीवी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं प्लीज नानी माँ कुछ तो करो।